السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا کسی نے یہ سوال بھیجا کہ غالباً کل کے بیان سے بھی شاید اس کا تعلق ہو کہ شیخ کی ججمنٹ مرید کے بارے میں کیا ہمیشہ صحیح ہوتی ہے کیا شیخ کی ججمنٹ مرید کے بارے میں ہمیشہ صحیح ہوتی ہے یا دوسرے الفاظ میں کہ شیخ کے پاس کون سا ایسا آلہ ہوتا ہے یا ٹول ہوتا ہے کہ جس سے وہ دوسروں کا خلوص اخلاص نیت وغیرہ میجر کرتا ہے. تو اس کے جواب کے لیے تھوڑی سی ہمیں اپنی امیجنیشن استعمال کرنی ہوگی. وہ اس طریقے سے کہ جیسا کہ ہماری عادت ہے کہ ہم تصوف کو جسمانی علاج کے سسٹم سے کمپیئر کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پچھلے دنوں سورہ بینہ کی تفسیر میں بھی آپ نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے یا اپنے بندوں کے علاج کے لیے ان بندوں کے حساب سے کسی کو مقرر کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی طریقے سے مقرر کیا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ بینہ کے اندر کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ, کہ یہ لوگ اتنے زیادہ بگڑ چکے تھے, اتنے زیادہ کفر و شرک کے اندر اور بغاوت کے اندر مبتلا ہو چکے تھے کہ انہوں نے باز نہیں آنا تھا جب تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بینہ نہ بھیج دیا. تو بینہ کے بھیجنے کے بعد ہی انہوں نے باز آنا تھا, اس سے پہلے یا اس سے کم چیز کے اوپر باز نہیں آنا تھا. تو اس کے بیان کے اندر سمجھایا تھا کہ مریضوں کے حالات کو دیکھ کر کے جو ہیلتھ منسٹری ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کا تعین کرتی ہے. جیسے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے جس اسپیشلٹی کی, جس ایکسپرٹیز کی, جس ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے اس علاقے کے مریضوں کے علاج کے لیے, تو ڈاکٹر ویسے ہی متعین کیا جاتا ہے. تو یہ تعین کرنا یہ دراصل ہیلتھ منسٹری کا کام ہوتا ہے, یہ ایڈمنسٹریٹرز کا کام ہوتا ہے جنہوں نے کہ عوام کی صحت کا انتظام کرنا ہوتا ہے. اب صحت ملنی کس کو ہے, کس کو نہیں ملنی, یہ معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ چیز ڈاکٹر کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, لیکن تعین بہرحال ڈاکٹر کا اس حساب سے ہی کیا جاتا ہے. تو جب دنیاوی علاج معالجے کے سسٹم کے اندر ڈاکٹر کا تعین اس انداز سے کیا جاتا ہے, تو اسی طریقے سے روحانی علاج معالجے کے اندر بھی ڈاکٹر کا تعین اسی طرح سے کیا جاتا ہے. جسمانی علاج کے لیے جب ڈاکٹر کو کسی علاقے کے اندر بھیجا جاتا ہے تو اس کو ایسے مجرد اٹھا کے نہیں بھیج دیا جاتا کہ بس تم جاؤ جا کر کے وہاں پہ کام شروع کر دو. بھیجنے والے ڈاکٹر کو جو نیسیسری اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ دے کے بھیجتے ہیں. سٹیتوسکوپ ہوتا ہے کم از کم, بلڈ پریشر چیک کرنے کا آلہ ہوتا ہے کم از کم, تھرمومیٹر ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ اگر پورا ہاسپٹل وغیرہ سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے تو ہاسپٹل کے اندر کچھ اور بھی اکوپمنٹس ہوتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کرنے کے اکوپمنٹ بھی دیے جاتے ہیں, رپورٹس نکالنے کا طریقہ وہ بھی دیا جاتا ہے, سی ٹی اسکین مشینز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں, ایم آر آئی مشینز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈاکٹر کو دے کر کے بھیجا جاتا ہے, حتیٰ کہ پورا ایک عملہ بھی دے کر کے بھیجا جاتا ہے کہ یہ عملہ جو ہے وہ آپ کے کام کے اندر آپ کے تعاون کرے گا. تو ایک چھوٹی سی جو دنیاوی اعتبار سے بیماریاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کے علاج کے لیے جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں منسٹری آف ہیلتھ ہوتی ہے وہ اتنا کچھ کر کے بھیجتی ہے ڈاکٹر کو टेस्ट करने के आले और मेजरमेंट करने के आले और ये सारी चीजें दे करके भेजती है। तो उसी तरीके से रूहानी दुनिया के अंदर भी जब अल्लाह ताला ने अपने बंदों के इलाज का कोई मामला करना होता है तो इलाज करने वाले को अल्लाह ताला ने भी टूल्स दे करके भेजे होते हैं, बगैर टूल्स के नहीं उठा के भेज दिया होता कि जाओ तुम जाओ और तुम्हारा काम जाने, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। तो ये जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स रूहानी दुनिया के अंदर यही होते हैं कि जिनसे कि जिनके साथ मामला किया जा रहा होता है तो उनका इलाज कैसे सही तरीके से हो सकता है। तो जिन टूल्स की जरूरत होती है वो टूल्स दे करके भेजे जाते हैं। अब ये टूल्स अंबिया अलैहिस्सलाम का जब दौर था तो उस दौर के अंदर ये टूल वही के दर्जे तक भी था, वही अंबिया अलैहिस्सलाम को दे करके भेजा जाता था और वही दोनों तरह की होती थी, एक कुरान के जरिए से वही नाजिल होती थी और दूसरा अंबिया अलैहिस्सलाम को खबरें दी जाती थी गैब की। तो फरिश्ते आकर के जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के फरिश्तों यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के नबी अलैहिस्सलाम को गैब की बातें बताया करते थे, हर चीज नहीं बताते थे, जिस चीज की जरूरत या जिस चीज को अल्लाह ताला हुक्म फरमाते थे वो चीज बताते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको हमारे अकाबरीन का जो अकीदा है उसके मुताबिक आलमुल गैब नहीं कहा जाता, नहीं माना जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी खबर अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दी इतनी खबर दुनिया में किसी और को भी नहीं दी। तो सबसे ज्यादा खबर रखने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी बातें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शेयर करी जो कि अल्लाह भी बेहतर जानता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी हर चीज की खबर नहीं दी। बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल किया और उस अमल का एक ऐसा नतीजा निकला जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं था। मिसाल के तौर पर एक ग्रोह आया और उसने कहा कि जी आप हमारे साथ कुछ अपने सहाबा को भेज दीजिए ताकि हम उनसे कुरान सीखें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को उनके साथ भेज दिया, लेकिन उन लोगों ने धोखाबाजी करी और उन 70 के 70 को तकरीबन सबको ही शहीद कर दिया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाकये के बाद कोई एक महीने तक कुनूत नाजला पड़ी, ये बात हम सब लोग जानते हैं, उन लोगों के खिलाफ बद्दुआ करी हर दफा नमाज के अंदर, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीजें देकर के भेजा। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया तो वही का सिलसिला भी साथ साथ खत्म हो गया, लेकिन कश्फ व इल्हाम का सिलसिला उसके बाद भी जारी रहा। कश्फ कहते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला एक शऊर अता फरमा दे या एक ऐसा देखने की सलाहियत अता फरमा दे जो कि मादे के पार देख सके, यानी मादे से मुराद दीवार मादे की बनी हुई है, सीमेंट की, पत्थर की, गारे की, मिट्टी की बनी हुई है, इसको मादा कहते हैं। मादे के पार इंसान नहीं देख सकता, अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत अता नहीं फरमाई, लेकिन कश्फ एक ऐसी सलाहियत होती है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे अता फरमा सकते हैं। इस कश्फ की वजह से उसको इतना शऊर मिल जाता है कि वो किसी मादे की चीज के पीछे देख सकता है कि क्या हो रहा है उसके पीछे। ये कश्फ दरअसल किसी मोमिन को भी मिल सकता है, किसी काफिर को भी मिल सकता है, काफिर को भी शक कश्फ मिल सकता है। तो ये कश्फ कोई बहुत बड़ी यानी ये कोई ईमान की अलामत नहीं है। कोई भी मेहनत मुजाहिदा करे, अपने ख्वाहिशात के खिलाफ काम करे, बजायर जो जाहिरी ख्वाहिशात होती है उनके खिलाफ काम करे तो उसको भी ये कश्फ मिल सकता है, अगरचे कि काफिर का कश्फ जो होता है उससे उसको कोई फायदा नहीं हो रहा होता। ठीक है, आप मादे के बाद देख सकते हैं, लेकिन देखने की वजह से आप जन्नत में तो नहीं चले जाएंगे कि बस आप देखने के काबिल हो गए, इसका मतलब यह कि आप जन्नत ही बन गए, जन्नत ही नहीं बन जाते इस तरीके से, जन्नत ही ईमान की वजह से बनते हैं। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं जो कि तकवा तहारत वाली जिंदगी के साथ उन्होंने अपने ऊपर मेहनत मुजाहिदा किया होता है, उनको कश्फ जो मिलता है उस कश्फ से वो दीनी और ईमानी काम ले रहे होते हैं, दीन की खिदमत के अंदर उनको मुआवन होता है वो, तो इस तरीके से वो उनके लिए फर्दर उनके दर्जात बुलंद होने का सबब बन जाता है, क्योंकि इस जरिए से इस टूल के जरिए से वो ज्यादा बेहतर दीन का काम कर लेते हैं। जो ज्यादा बेहतर दीन का काम करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स अचीव होंगे ना, तो जब ज्यादा रिजल्ट्स अचीव होंगे तो जन्नत के अंदर दर्जात भी ज्यादा बुलंद मिलेंगे। तो ये ईमान वाले औलिया कराम उनको जो कश्फ मिलता है वो एक टूल होता है अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ, लेकिन कश्फ भी एक वाहिद टूल नहीं होता, हर एक को कश्फ नहीं मिलता, और खुसूसन आज के दौर आज के जमाने के अंदर कश्फ मिलना और भी ज्यादा मुश्किल, इसलिए कि जिस किस्म की गजाएं मिलती हैं, जिस किस्म के माहौल के अंदर हम रहते हैं, तो इन चीजों की वजह से कश्फ का जो एक खास मेहनत होती है, वो मेहनत कोई कर नहीं पाता। ये बहुत कम लोग इतना माशाल्लाह कोई अपने खास जिंदगी गुजार रहे होंगे, तो वो जैसा कि हमें मशाइख तक ने यह फरमाया कि अगर एक खास तरतीब के ऊपर इंसान 40 दिन तक रहे और खास किस्म का खाना खाए और इस किस्म की इबादतें करे तो 40 दिन के बाद उसको कश मिल सकता है। आज के दौर के अंदर भी ऐसा है, लेकिन वो 40 दिन लाएं कहां से, वो 40 दिन किधर से आएंगे? आज तो कोई फिजिकल इलाज करने के लिए अगर हकीम कह दे कि मेरे पास आके 40 दिन रहो तो मुमकिन ही नहीं होता 40 दिन जाकर के। हालांकि जरूरत है इलाज मुआवजे के लिए, लेकिन मुमकिन ही नहीं है 40 दिन, तो कश्फ हासिल करने के लिए 40 दिन कहां से निकालेंगे? क्योंकि मामूली बात तो नहीं है। अगर तबलीग की मेहनत में 40 दिन निकाल लेते हैं तो तबलीग की मेहनत में भी ऐसे कोई थोड़ी होता है कि आप बैठ के चिल्ले कर रहे हो, आप जो है वो अपना पका रहे हो और अपना खा रहे हो। वो तो आपने सफर करना होता है, मस्जिदों में जाना होता है, इलाकों में जाना होता है, तो उस 40 दिन की मेहनत से कश्फ तो नहीं मिलता। तो कश्फ जो है वो भी एक टूल है, लेकिन कश्फ इज नॉट दी ओनली टूल। तो गैर अंबिया के लिए भी फिर और टूल्स भी अल्लाह ताला ने रखे, और ये बहुत आसान है समझना। अल्लाह ताला ने एक चीज रखी जिसको कहते हैं बसीरत, और बसीरत जो है वो इंसान को अपने तकवा की वजह से, अपनी नेकनीयती की वजह से अल्लाह ताला दे देते हैं। तजुर्बे की वजह से भी बसीरत मिल जाती है, मेहनत की वजह से किसी चीज के ऊपर आपने बहुत मेहनत करी हो तो आपको इस फील्ड के अंदर एक बसीरत मिल जाती है एक्सपीरियंस की वजह से खालिसतन। जैसे कि आज इस पहले भी मिसाल दे चुका है कि एक दफा हमारी जिस मस्जिद में आप लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, वहां की उसी मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, भाई हमारे डॉक्टर हैं, मौजूद हैं यहां पर, तो कहा कि भाई मुझे जरा ऐसा ऐसा फील हो रहा है तो आप देख लीजिएगा, जरा गला देख रहे हैं ये कर रहे हैं। तो भाई ने मेरी आवाज सुनकर के कहा कि तुम्हारे तो गले में से सीटी की आवाज आ रही है, तुम्हारे तो सीने में से आवाज आ रही है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो बिल्कुल कोई ऐसी चीज फील नहीं हो रही, लेकिन उनको फील हो गई। सुना उनको अंदाजा हो गया, क्यों? पिछले पता नहीं 20-25 साल से जो है वो मेडिकल प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, मरीज देख रहे हैं, लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है और उनका ओढ़ना बिछोना यही काम है, और तजुर्बा हो जाता है इंसान को। तो कर करके इंसान को एक इदराक हासिल हो जाता है जो एक दूसरे आदमी को हासिल ही नहीं होता, बिल्कुल उसको पता नहीं होता, लेकिन तजुर्बे की वजह से डॉक्टर को हासिल हो जाता है एक्सपीरियंस डॉक्टर को। तो उसी तरीके से अल्लाह वालों को भी बसीरत हासिल हो जाती है। और फिर एक चीज इससे भी बढ़कर है जिसको कहते हैं फुरकान, के कैसे हक और बातिल के दरमियान तफरीक की जाए, क्या चीज हक है क्या चीज बातिल है। ये तो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं तकवे के नतीजे में, जो भी तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला ने कुरान में वादा फरमा दिया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू फुरकाना, कि जो भी तकवा इख्तियार करेगा हम उसको फुरकान अता फरमा देंगे। तो जब कोई इंसान तकवा वाली जिंदगी गुजारता है, अपने तौर पर जितना कर सकता है वो नेकी का काम करने की कोशिश करता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, तो उसको भी अल्लाह ताला एक समझ, एक इदराक अता फरमाते हैं, जिससे कि उसको अंदाजा हो जाता है कि जी कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। हम बचपन के अंदर जब क्लास में बैठते थे तो टीचर जो होती थी वो हमें कहती थी कि एकदम से पढ़ाते वो किसी को कहती थी तुम ये काम मत करो, तुम क्या कर रहे हो, अटेंटिव हो जाओ। तो हम समझते थे कि यार हम तो बहुत बहुत नजर बचा करके और टीचर से छुप करके कोई काम कर रहे हैं, लेकिन टीचर जो के सामने खड़ी होती थी या खड़ा होता था तो एक पूरी की पूरी उसकी एक तायराना नजर होती थी, एक एरियल व्यू होता था पूरी क्लास के ऊपर उसको, जो बच्चा भी जरा से भी इधर उधर करता था उसको पता लग जाता था, क्योंकि वो एक टीचर की नजर होती थी। और बच्चे समझते थे कि हम तो बहुत छुप करके और बहुत नजर बचा कर काम कर रहे हैं। तो जो भी इस तरह से भी खड़े होकर के एक एरियल व्यू ले रहा होता है उसको वो चीज नजर आ जाती है जो कि बंदा समझ रहा होता है कि मैं तो छुपा के कर रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर कश्फ व इल्हाम ना भी हो, ना भी आता हो, तो भी जस्ट द फैक्ट कि आप जो है वो एक टीचर के सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, आप जो है वो एक स्पीकर की सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि अगला बंदा क्या कर रहा है। इसको बॉडी लैंग्वेज को रीड करना भी कहते हैं, बंदे की बॉडी लैंग्वेज रीड करके पता लग जाता है, बंदे के अल्फाज सुनकर के अंदाजा हो जाता है कि भाई वो पहले कैसा था अब कैसा है आगे क्या है इसकी प्रोजेक्शन है। तो ये कोई 100% डेफिनेट चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक इदराक, एक बसीरत, एक फुरकान, ये चीजें जो है वो अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं। क्यों? इसलिए कि शेख जो होता है वो तो अल्लाह ताला ने इस्लाह के लिए सबब के तौर पर भेजा है ना, तो अब अल्लाह ताला अगर चाहते हैं कि किसी की इस्लाह हो تو آپ اسباب جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے تو ان اسباب کو ٹولز پرووائڈ کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسباب والا سسٹم یہاں پہ بنایا, اسباب کے ذریعے سے ہی انسانوں کو جسمانی بیماریوں میں شفا ملتی ہے, حالانکہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے, لیکن ڈاکٹر کو تعین کرنا, ڈاکٹر کو جو ہے وہ یہ ساری مشینز دینا, ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایکسپیرینس دینا, اس کو ایجوکیشن دینا تاکہ وہ ان بیماریوں کا علاج کر سکے, یہ سب تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ بغیر ڈاکٹر کے شفا نہیں دے سکتے؟ کیا مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے شفا دینا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا, اب اس نظام کا ہمیں ماتحت کر دیا, جی اس نظام کے اندر رہ کر کے تم نے اپنا علاج کرنا ہے. تو اسی طریقے سے روحانی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے, ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی انبیاء علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں انبیاء کے کہ انبیاء آئیں گے تو میرے بندوں کو ہدایت دی جائے گی ان کے ذریعے سے. علماء کے بھی محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے علماء کے ذریعے سے ان پہنچوانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے مشائخ کے ذریعے سے ذکر سکھوانے کی. اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے ڈائریکٹ ذکر سکھلوا دینا, ڈائریکٹ ان پہنچوا دینا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا, جب نظام بنا دیا اور اس کو ہم مانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا, تو بھائی نظام کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی تو اسے فلفل کرنی ہوتی ہیں جسے نظام بنایا ہوتا ہے, تو اس میں کون سا مشکل بات ہے؟ کیا مشکل ہے اس کو سمجھنا؟ تو یہ تو شیطان ہوتا ہے نا جس نے کہ دراصل نظام سے آپ کو محروم کرنا ہوتا ہے, نظام کے بارے میں آپ کے دل میں ڈاؤٹس ڈالنے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ صحت مند ہو, اس لیے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آپ اس نظام کے اندر آ کر کے آپ صحت مند ہو جائیں, آپ کا تزکیہ ہو جائے, آپ جو ہے وہ اپنا اخلاص آپ کو حاصل ہو جائے, آپ کو للہیت حاصل ہو جائے, آپ کو خیر خواہی حاصل ہو جائے. تو وہ اس کی وجہ سے نظام کے بارے میں ڈاؤٹس ڈالتا رہتا ہے کہ جی کیا ضرورت ہے اس کی, اللہ ہے نا, اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں بات کرتے. پچھلے دونوں عورتوں میں کلاس ہوئی تھی, آپ لوگوں نے شاید ریکارڈنگ سنی ہو یا آپ کی اہلیہ نے شاید آپ کے سامنے ذکر کیا ہو, اس کلاس کے اندر کسی نے یہی سوال کیا, بڑا مزے کا سوال. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم, کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. تو کیا ضرورت ہے شیخ کی؟ مجھے تو جلال آ گیا اس کے اندر, ان کو تو پھر اچھی طرح سے سنایا پھر میں نے, کیونکہ وہ درس قرآن بھی دیتی ہیں خاتون, یہ وہ خاتون ہیں جو کہ درس قرآن دیتی ہیں. یہ دعا کے بارے میں بات ہو رہی ہے, دعا آپ شیخ سے نہیں مانگتے, دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. لیکن شیخ کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا, ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جب بچہ بیمار پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ کیا ضرورت ہے اس کو اسپتال لے جانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اللہ تعالیٰ اس کو شفا دینے پر قادر ہے. تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کے اوپر اکتفا نہیں کرتے, اسی طرح سے شیخ کے پاس جانا ہوگا. اور شیخ نے کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا, جس طرح ڈاکٹر کو اللہ نے بھیجا. ڈاکٹر بھی اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا, کسی علاقے میں ڈاکٹر نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ نہ چاہے, اور اسی طرح سے شیخ بھی کسی علاقے میں اپنی مرضی سے نہیں پہنچ سکتا اگر اللہ نہ چاہے. تو شیخ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو ڈاکٹر کو اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیتھوسکوپ دے کر کے بھیجا ہے, ایک ایم آر آئی مشین دے کر کے بھیجا ہے, تو شیخ کو کیا اللہ تعالیٰ بصیرت اور فرقان اور اس طرح کی چند صلاحیتیں دے کر کے نہیں بھیج سکتا؟ مقصد تو بندوں کی اصلاح کرنا ہے نا, مقصد تو بندوں کو شفا پہنچوانا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اللہ ٹیکس گڈ کیئر آف اٹ. تو کسی کو اگر کچھ بھی نہیں ہوتا نا, ہمارے جیسا کوئی بالکل ہی گیا گزرا کوئی بھی آ جائے نا, تو بھی اللہ تعالیٰ اس موقع کے حساب سے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. انگریزی زبان میں انٹیوشن کہتے ہیں اس کو, عربی زبان میں اس کو الہام کہتے ہیں. لیکن یہ ایک عام سی بات ہے, یہ ایک انسان کے دل میں بھی آتا ہے, ایک مکھی کے دل میں بھی آتا ہے. جس میں کیا ہے, مکھی کے دل میں اگر اللہ تعالیٰ الہام کر فرما سکتے ہیں, چونٹی کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں, تو کیا انسان کے دل میں الہام نہیں فرما سکتے؟ تو بات ہو رہی ہوتی ہے کسی کے ساتھ, وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا جواب دل میں ڈال دیتا ہے. بھائی مسئلہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس بندے کو جواب پہنچوانا, اللہ تعالیٰ نے شیخ کو وسیلہ بنا دیا اس کا, بس ختم. سیدھی سی بات, بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا, مشکل کام نہیں ہے سمجھنا. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ سمجھانا تو ایکچولی یہ باتیں آسان ہے, سمجھنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں پہ پردہ ہے, آنکھوں پہ اپنی خواہشات کا پردہ ہے, اپنے نفس کا پردہ ہے, بات ماننا نہیں چاہتے, بات سننا نہیں چاہتے, بات اپنی چلانا چاہتے ہیں. تو سمجھنا مشکل ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, سمجھانا مشکل نہیں ہے, سمجھنا مشکل ہے. اس لیے کہ سمجھنے والا جو کہ سمجھنے کے اینڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ سمجھنا چاہ نہیں رہا ہوتا ہے, وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں اگلے بندے کی بات سنوں. اور اس کی وجہ صرف اپنی انانیت ہوتی ہے, صرف اپنی انانیت, اپنا تکبر, اپنی نفس پرستی. کیونکہ اپنی مان کے چلنا چاہتے ہیں, اگلے بندے کی مان کے نہیں چلنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے. आप समझा दें, 10,000 मिसालें दे दें, बंदे की समझ में नहीं आएगी बात। जो ना समझना चाहेगा उसके हरगिज समझ में नहीं आएगी, आप कितनी ही लॉजिक इस्तेमाल करके। डॉक्टर के सामने आप डॉक्टरी की मिसाल दें उसको समझ में नहीं आएगी, हालांकि वो खुद अपनी जिंदगी ऐसी गुजारता है, वो खुद दिन रात उसका ये काम है करना, लेकिन आप उसको उसी की प्रोफेशन से मिसाल देंगे उसको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी भाई, क्या मसला है इसके अंदर? नफ्स परस्ती, अनानियत, तकब्बुर और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो सिर्फ अपना नफ्स रुकावट बनता है हिदायत के रास्ते में, अपना नफ्स रुकावट बनता है बात को समझने के रास्ते में, और कोई चीज रुकावट नहीं बनती। अल्लाह ताला का यही मामला है, अल्लाह ताला उसी को हिदायत देते हैं जो हिदायत चाहता है। जो हिदायत चाहता नहीं है ना, उसको आप कुछ समझा दें, कुछ कर दें, कितने दलाइल दे दें, कितनी लॉजिक दे दें, कितना कश्फ पहुंचा दें, कितना इल्हाम पहुंचा दें, क्या आप काफिरों ने मान के दिया था? उनके सामने चांद के दो टुकड़े हो गए, मान के दिया उन्होंने? नहीं मान के दिया। उन काफिरों ने चांद के टुकड़े होते हुए भी मान के नहीं दिया, अपनी नजरों से देख रहे थे। क्यों? क्या चांद का टुकड़ा कर देना क्या आसान काम है? कोई क्या कर सकता है अपनी मर्जी से चांद का टुकड़ा? नहीं कर सकता, लेकिन वो मानना नहीं चाहते थे। अब आप चांद के टुकड़े क्या सूरज के भी टुकड़े हो जाते ना, उन्होंने नहीं मानने था, नहीं माना था उन्होंने। तो ये चीजें अल्लाह ताला जो करवाते हैं ना, ये दरअसल ईमान वालों के लिए करवाते हैं। ईमान वालों का तर्जुमा हमारी जुबान में क्या होता है? मानने वाले। तो जो मानने वाले होते हैं उनको इन चीजों से उनका ईमान मजीद मजबूत होता है, अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर मजीद दराजात अता फरमाते हैं, उनके सामने मौजजात होते हैं, उनके सामने करामतें होती हैं, उनके सामने नेकियां खुलती हैं, वो उनके ऊपर ईमान लाते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला की हमद सना करते हैं, अल्लाह ताला उनको और बड़े बड़े दराजात अता फरमा देते हैं। तो ये जितने भी मौजजे, जितने भी करामतें, जितने भी इस किस्म की बातें होती हैं, ये ईमान वालों के लिए होती हैं। अल्लाह ताला अपने ईमान वालों को, वो लोग जो कि अल्लाह ताला को मानने का इरादा करके जिंदगी गुजारते हैं ना, अल्लाह ताला उनको दरअसल नवाजना चाहता है। ये अल्लाह के अपने बंदे होते हैं, ये फेथफुल्स होते हैं, और फेथफुल्स को, मानने वालों को हर कोई नवाजता है। ये आज एक छोटी सी मिसाल देकर खत्म करेगा कि इस मुल्क के अंदर हमारा बहुत ये वास्ता पड़ता है कि जी जो गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, मिनिस्ट्री के जो फॉर्म्स होते हैं, वो अरबी जुबान में होते हैं। हर चीज अंग्रेजी जबान में हो गई, हत्या कि सड़कों के साइंस भी उन्होंने अंग्रेजी जबान में कर दिए, हर चीज अंग्रेजी जबान में कर दी। भाई गवर्नमेंट के फॉर्म्स क्यों नहीं अंग्रेजी जबान में करते? तो लोग कहते हैं कि भाई वो फिर ये जो इनके हैं वो क्या करेंगे फिर? तो वो उनका तो जरिया माश यही है कि वो फॉर्म्स भरते हैं खारिजियों के लिए, फिर फॉर्म्स के ऊपर काम करते हैं, और मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो सिर्फ वही लोग काम करते हैं जिनको कि वो जबान आती है। खारिजियों को मोहताज बना दिया। दरअसल क्या है कि हुकूमत ने खारजियों को मोहताज बनाया है अपने बंदों का। क्यों मोहताज बनाया? इसलिए कि वो उसके अपने बंदे होते हैं, वो उसके मानने वाले होते हैं, वो फेथफुल्स होते हैं, वो उसके सिटीजन्स होते हैं। सिटीजन कौन होता है? मानने वाला। पैदाइश वाला हर बंदा, पैदाइश जो उस मुल्क में हुई होती है, वो हर बंदा सिटीजन नहीं होता। अगर वो ना मानने वाला बन जाए ना, पैदा उसी मुल्क में हुआ है, ना मानने वाला हो जाए, उसको तो जिंदा नहीं रहने दिया जाता। बागी की क्या सजा होती है? बागी की सजा मौत होती है। किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी मुल्क मुआशरे में चले जाएं, बागी की सजा जिंदा की सजा ही होती है कि तुम्हें जिंदा रहने का हक ही नहीं है। तो भाई जो बागी है, अगर उसको जिंदा रहने का हक नहीं है, तो जो मानने वाला है तो उसको फिर नवाजना भी तो होता है ना, उसका हक बनता है। भाई वो मान रहा है, अब उसको नवाजो, उसको जॉब सिक्योरिटी दो, उसको जो है वो सहूलियतें दो, उसको स्टाइपेंड्स दो, उसको जिंदा रहने के लिए और सहूलतें दो, बिकॉज वो मानने वाला है। मानना ये एक अच्छी बात होती है, और ना मानना ये बुरी बात होती है। तो हर बंदा, हर निजाम मानने वालों को नवाजता है। अल्लाह ताला का भी यही निजाम है, मानने वालों को अल्लाह ताला नवाजते हैं। कैसे नवाजते हैं? उनको जन्नत में ऊंचे ऊंचे दर्जात देकर के, और ऊंचे ऊंचे दर्जात देने के लिए बहाने बनाते हैं। कभी जो है वो उनके सामने इस तरह के वाकयात हो जाते हैं जिनके ऊपर वो अल्लाह ताला की और हमद सना करते हैं, अल्लाह ताला उनको और मुकाम दे देते हैं। कभी उनको अल्लाह ताला कोई आजमाइश भेज देता है, कोई उनके ऊपर तकलीफ आ जाती है, वो उसके ऊपर सबर करते हैं, इसके जरिए से उनके दर्जात बढ़ा देते हैं। यानी अल्लाह ताला कोई ना कोई बहाना बना बना करके अपने मानने वालों को नवाजता है। यही बात हमारे हजरत ने एक टॉपिक है, हजरत का अक्सर उसके ऊपर एतकाफ के अंदर बयान करते हैं कि क्या है वो, देनी थी जन्नत तो बहाने बना दिए, इस किस्म का। कि जन्नत अल्लाह ताला ने दरअसल देनी थी, तो रमजानुल मुबारक का पूरा महीना क्या है कि वो दरअसल जन्नत कमाने का एक बहाना है, जन्नत अता करने का एक बहाना है। और किसको अता होती है? ना मानने वालों को अता नहीं होती, मानने वालों को अता होती है। तो बहरहाल सवाल जो है वो छोटा सा था, उसके जवाब भी छोटा ही था, लेकिन बात समझाने के लिए और चीजें भी अर्ज करती कि जो टूल होता है शेख के पास, वो टूल यही सब कुछ चीजें होती हैं जो कि अल्लाह ताला ने उसको अता की होती हैं, और मकसद जो है वो दरअसल बंदों की इसलाह होता है, बंदों को उनके रूहानी बीमारियों से निजात दिलवाना होता है, उनके रास्ते में जो रुकावटें होती हैं रुकावटों को दूर करना होता है। तो दरअसल ये उन बंदों की तलब और उन बंदों की जो इखलास होता है ना, उसके हिसाब से फिर अल्लाह ताला टूल्स भी अता फरमाते हैं शेख को। तो अगर यानी जैसे हालात होते हैं उनके हिसाब से अल्लाह ताला डॉक्टर को भी भेजते हैं, और जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से अल्लाह ताला टूल्स भी अता फरमा देते हैं। तो ये दरअसल ये सारा का सारा मामला अल्लाह ताला, ये सारा तमाशा, ये सारा का सारा निजाम, ये सब अल्लाह ताला का सेट किया हुआ है, अल्लाह ताला ही का चलाया हुआ है। हम मोहरे हैं, हम फकत मोहरे हैं पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, और हमारा काम यह है कि हम मोहरे बन करके रहें। दिस इज आवर गोल ऑफ लाइफ, हम अल्लाह ताला के मोहरे बन के रहें। इसी को इन अदर वर्ड्स कहते हैं अल्लाह ताला का बंदा बन करके रहना, बंदा बन करके, गंदा बन करके नहीं बल्कि बंदा बन करके रहना। बस इतना सा काम हम कर लें, बाकी अल्लाह नोज व्हाट टू डू, अल्लाह नोज हाउ टू डू इट, अल्लाह नोज हाउ टू क्योर समवन, अल्लाह नोज हाउ टू नॉट क्योर समवन, अल्लाह ताला को बहुत बेहतर पता है। हमें अल्लाह ताला से बंदगी की तौफीक मांगनी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना बंदा बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।